آيت 162 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے بجائے جو ان سے کہی گئی تھی. ایک دوسری بات وہی حتت ان کی بجائے ہنتت ان کہنے کی طرف اشارہ ہے. گیہوں چاہیے. ان کو لفظ بدلنے کا بہت شوق ہے. آپ دیکھیں اس قوم کے مزاج میں پیروڈی ہے. فرسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے. کیا ظلم تھا ان کا ادھر؟ اللہ کے حکم کی شکل بدل دینا. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا دور پورا ہوا. کون سا؟ 40 سال کا. موسیٰ کی زندگی میں جو کچھ حالات تھے پورے ہو گئے. اس کے بیچ میں آپ کو دیکھنے میں تو لگے گا ایک دن کی بات ہے. اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملے ہوئے, انہوں نے امالکہ قوم پہ زر قبضہ پایا, بہت کچھ ہوا. اس کے بیچ میں کافی سال گزر گئے, دوبارہ ان میں بگاڑ آیا, پھر ان کو غلام بنایا گیا. لیکن بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے. اب ان کے ٹائم ایرا کو دیکھیں تو اب نیچے آ رہے ہیں. اس دور میں حالات کیا ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل پھر مختلف برائیوں کا شکار ہو گئی تھی. ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے تھی, ایلات نام کی بندرگاہ آج بھی کہتے وہاں موجود ہے. وہی واقعہ جو سورہ بقرہ میں پڑھ چکے, اس کو اب ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھیں گے. اب یہ بستی کا واقعہ ہے, اکٹھا سن لیجئے. وزل ہم, اور سوال کیجئے ان سے, پوچھئے ان سے. کن سے کون پوچھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا کہ بنی اسرائیل کے یہود مدینہ سے پوچھئے, کیونکہ یہ ان کی ہسٹری کا واقعہ تھا نا. کیا پوچھے؟ انل قریت التی کانت حادرۃ البحر, اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی. اسی کو ثابت سبت کہتے ہیں, سبت ہفتے کے دن کو, کیونکہ اس دن آرام کرتے تھے. سبت کا منی کاٹنا. یہ بستی آج کل جہاں ایلات نام کی بندرگاہ ہے, 1966 میں, 1966 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر نے اسی بندرگاہ کا گھراؤ کیا تھا, جس کے خلاف پھر اسرائیل نے شدید ریئیکشن شو کیا اور مصر, شام اور اردن پر حملہ کیا اور اس کے کئی علاقوں پہ قبضہ کیا. تو بہرحال اگر آپ مصر سے جزیرہ نمائے سینا, شام سے جولان کی پہاڑیاں اور اردن سے مغربی کنارہ جو فلسطین کا زرخیز ترین علاقہ ہے اس کو دیکھیں, تو یہ وہاں کی بستی تھی. اس کو انہوں نے ہتھیا لیا. مچھیروں کی بستی تھی. بیچاروں کا پروفیشن تھا مچھلیاں پکڑنا. ہوا کیا؟ اس یادون اف سبتی, جب کہ وہ سب کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے. کیا ہوتا تھا؟ اس تاتی ہم ہی تان ہم یوم سبتی ہم شرا, جب کہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگے لگاتی ہوئی, اڑتی ہوئی. یہ جو لفظ ہے نا تاتی ہم, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, ایتا یاتی تو, لیکن ہی تان ہوت کی جمع ہے. ہوت مچھلی کو کہتے ہیں. عربی میں قرآن پاک میں مچھلی کے کتنے لفظ آئے ہیں ابھی تک؟ کیا پڑھا آپ نے؟ ہوت آگے نا, ہوت, سمک, نون اور نون. سورہ نون میں بھی آئے گا. اسی طرح ایک آدھا اور نام ہے. تو یہ مچھلیوں کی طرف اشارہ ہے. کیسے آتی تھی؟ یوم سبتی ہم, جس دن وہ چھٹی کرتے تھے. شران, شران کا لفظ شین را عین سے ہے. شار یا تن کی جمع ہے. نیزے کو کھڑا کرنا. آپ نے کبھی بادوان دیکھا؟ کچھ کشتیوں کے اوپر ایک سیدھی سٹک کے ساتھ ایک جھنڈا سا ہوتا ہے, بس اس کو لگا لے, ذہن میں رکھ لیں. ابھر ابھر کے آنے کا معنی ہے, یعنی مچھلیاں اس دن عام دنوں سے زیادہ آتی تھی. اچھا یہی لفظ شران جو ہے نا, اسی سے لفظ شریعت بھی ہے. شریعت بھی سیدھا اور صاف رستہ ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ مچھلیاں اس دن بڑا اچھلتی تھی. ہم سب پیچھے پڑ چکے کہ ہفتے کے دن ان کو کام کرنے سے روکا گیا تھا, اور اس دن ان کی مچھلیوں کا اوپر آنا کیا بتاتا ہے؟ مچھلیوں کو بتاتا ہفتے کو میں کوئی پکڑتا نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی سینس ہوتی ہے, تو جب ان کو ڈر کوئی نہیں تھا, کہتی ہوں گی چلو ہم بھی ذرا سن لائٹ کا مزہ لے لیں. تو جب وہ اچھل اچھل کے آتی تھی نا, تو ان کے منہ میں پانی آتا تھا. ہی تاند ہم کہنے میں بھی مچھلیاں, یہ اصل میں ان کا رسک ہے. لیکن امتحان تھا ان کا کہ حلال سے لیتے ہو یا حرام سے لیتے ہو. ہی تان ہم کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ ہائی لائٹ کریں, مچھلیاں تھی ان کی, لیکن انہوں نے حلال کی بجائے حرام سے لے لی. مفسرین کہتے ہیں رسک بندے کا ہی ہوتا ہے, چاہے اس کو حلال سے لے لے چاہے حرام سے لے لے. مل جانی تھی ان کو, نہ بھی اللہ کا حکم توڑتے پھر بھی مل جانی تھی. بس صبر نہیں کر پاتا بندہ, اور رسک حلال کی جگہ دوسری چیزوں پہ جاتا. لہذا مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ, اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا उस दिन वो बिल्कुल नहीं आती थी। 6 दिन हफ्ते मछलियां पानी में रहती, जान बचानी थी, जरा उनको पता ये हमें पकड़ लेंगे। तो लिहाजा उस दिन नहीं होते थे, और उस जमाने में कोई जहाज वगैरह नहीं थे कि जिसमें बैठ के वो नीचे से निकालते। तो बहरहाल अल्लाह का तजालिक नबलू हम भी माँ का नैब सुकून, इसी तरह हम इनको आजमाते रहे, बस वजह इसके कि वो नाफरमानी करते थे। इनकी नाफरमानी क्या थी कि शरीयत के हुक्म को बदल देते थे। शरीयत के हुक्म पर कायम रहते हुए अगर ये अल्लाह की बात मानते, फाके बर्दाश्त कर देते, तो अल्लाह ताला इनकी आजमाइश ना करता। लेकिन इन्होंने शरीयत के साथ मजाक किया, दूसरा रास्ता इख्तियार किया, चूर दरवाजा निकाल दिया। हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ते थे हकीकत में, सिर्फ जाके साहिल समंदर पर जाके गड़े खोद देते और नालियां बना देते। मछलियां जब जोश से पानी के साथ आती ना, तो मछली गिर जाती उस गड़े में, तो पानी वापस चला जाता। जब सूरज डूबता, अगले दिन इतवार शुरू होती, तो रात को जाके उनके अंदर, और उसमें कहते घड़ों में इन्होंने मछलियां पकड़ने के जाल लगाए हुए थे। जब उनको कोई पूछता, कहते मछली तो नहीं आज पकड़ी, क्यों? जाल जुमे को लगाया था, मछलियां इतवार को निकाली है। तो देखो क्या किया, बस ये था इनका मकर, इसको कहते हैं प्लॉटिंग, लूप होल्स। शरीयत में लूप होल्स निकालने वालों की ये सजा है। अल्लाह कहते इन्होंने मजाक किया, दीन की रूह खत्म की। असल रूह ये थी कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन इबादत करो। होली डे का क्या मतलब है? छुट्टी और एक की जगह दो मूवीज नहीं, होली मीन होली, इबादत करो, फारिग रखो, छोड़ो रिस्क रोटी के फिक्र, देखेंगे जब होगा। एक दिन अल्लाह के साथ बातें करो, हो सकता है तुम्हें उसमें मिले। इन्होंने उसकी रूह इस तरह कर दी कि पानी को कहीं रोका कहीं बन गया। अब हुआ क्या, इनके 3 गिरोह हो गए, लिख लीजिए। एक गिरोह बराह रास्त इस काम में मुलविस था, दूसरा ग्रुप वो था जो काम तो ये नहीं कर रहे थे लेकिन इनको मना भी नहीं कर रहे थे, यानी साइलेंट स्पीकर्स, या जिसको आप कह लें पीस मेकर्स, कहते थे हम क्यों बुरे के बने गैर जानिबदार हो। तीसरा गिरोह वो था जो खुद गुना से भी बचा और इन लोगों को मना भी करता रहा, यानी नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा किया। अब अगली आयत में दूसरे और तीसरे गिरोह के दरमियान एक मुकालमा है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा कि किस तरह से गैर जानिबदार रहने वाले, यानी साइड पे रहने वाले, नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हैं और बता रहे हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको हमें समझाना चाहिए। आयत 164। और जब कहा एक गिरोह ने इनमें से कि क्यों नसीहत कर रहे हो इन लोगों को जिन्हें या तो अल्लाह हलाक करने वाला है या फिर इन्हें अजाब देने वाला है, बहुत सख्त अजाब। समझ रहे भी, तुम क्यों इनको रोकते हो, तुम क्यों बुरे बनते हो, जब होना है तो हो जाएगा। कभी ये लोग कहते हैं भी तुम क्यों बुरे बनो, हाँ दूसरे गिरोह के लोग तीसरे लोग गिरोह के लोगों से कह रहे हैं कि तुम क्यों हलकान करते हो अपनी जान को, करने दो, लोग खुद ही अजाब चखेंगे। लेकिन सोचिए तबलीग करने वाले क्या कहते हैं, कालू माजिरतन इला रब्बिकुम, का ना माने लेकिन हमारा एक उजर तो बन जाएगा रब के सामने, हम अल्लाह को माजरत तो पेश कर देंगे। फिर तीसरे ग्रोह के लोग जवाब देते हैं कि देखो अल्लाह के सामने सच्चे होने के लिए ये कर रहे हैं, और दूसरी बात वाला अल्लाहुम यत्तकून, शायद वो मान भी जाए। ये हैं दो मोटिव जो तबलीग करते हुए सामने होने चाहिए, अल्लाह के सामने उजर कि अल्लाह मैंने अपनी कोशिश की थी, मेरी चोंची इतनी थी, इसी से इतना ही पानी डाल सकी, और दूसरी के लोग बदलेंगे, इंशाल्लाह बदलेंगे, नसीहत का असर होगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को एक मौके पे कहा कि अली अगर तुम्हारे जरिए अल्लाह एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो ये दौलत तुम्हारे लिए सुरखुंठों से बेहतर है। तो कभी भी मौका नहीं जाने देना चाहिए। हुआ क्या, आयत 165, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरु बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, यहाँ नंबर 1 लगा लें। फिर जब उन्होंने नजरअंदाज कर दी इस नसीहत को जिन्हें की जा रही थी, तो हमने बचा लिया इनको जो बुराई से रोकते थे, जो रोक रहे थे उनको तो कुछ ना कहा। और वह अखस नजलमु बिम बीमा कानुसुन, और पकड़ लिया इनको जो जुल्म के मुर्तकिब हुए और बहुत बुरे अजाब में नाफरमानी की वजह से। यहाँ देखिए अजाब आ गया, 2 किस्तों में अजाब आया। अगर आप नोट करें ना, पहला अजाब क्या है, बी अजाबिम ब ई सिन बीमा कानो यफसुकुन, यहाँ नंबर 1 लिख लें, बाद में इस पे बात करेंगे। आगे क्या हुआ, दूसरे अजाब की तरफ इशारा आएगा, आयत 166, फलम मा अतौ, और जब वो हद से ही बढ़ गए, अमानहु अनहु, उस मामले में जिसमें उनको रोका गया था, तो कुलना लहुम कुनु किरदतन खासीन, तो हमने उन्हें कहा कि जलील बंदर बन जाओ। ये है दूसरा अजाब। 3 गिरोह थे, एक गिरोह तो बच गया, और दूसरे दो को दो अजाब आ गए। जो बात समझ आती है कि जिन्होंने बंदरों को पकड़ा मारा, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, किस तरीके से अल्लाह तआला ने उनके जुर्म के मुताबिक उनको सजा दी। इसीलिए तो कान्जैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सुई, हम उनको बचाते हैं जो बुराई से रोकते हैं, वख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईस, और उनको पकड़ लिया जो गलत काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दूसरों को जो करना है करने दो। अगर आप इस आयत को याद करते हैं वक्त सूरत मायदा की वही आयत याद कर लीजिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ अख्तदैतुम, कि लोगों की फिक्र छोड़ो अपनी करो। बहुत सारे लोग उस आयत को मिसकोट करते हैं ना कि जी मत लोगों को बुरा कहो, बस जो करता है कोई करने दो। तो इस आयत को आप उसके साथ मिला के देख ले तो पता क्या चलता है कि अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक लोगों को बुराइयों से रोकते रहो। नहीं अनिल मुनकर करना फर्ज के दर्जे में, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा हज जकात फर्ज है, ऐसे बुराई से रोकना फर्ज है और नेकियों का हुक्म फर्ज है। और जहाँ खुल्लम खुल्लम गुनाह हो रहे हो फिर वहां आप देख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ लजीना जलमु कौन है? बुराई से ना रोकने वाले लोग, और अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत जोर से पकड़ता है। वो रिवायत आपने सुनी होगी हजरत जाबिर से कि अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल को वही की कि जाओ फलां शहर को उलट दो उसके बस्ती के ऊपर। जिब्राइल ने कहा अल्लाह ताला वहां एक ऐसा बंदा है कि जिसने कभी नाफरमानी नहीं की पलक छपकते हुए भी, तो कहा उसको भी, क्योंकि उसने लोगों को बुराई करते हुए देखा और कभी गैरत की वजह से एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग नहीं बदला। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मला तक्तुल नबी गज़बिक वला तुहलिक नबी अज़ाबिक। आज आप देखिए शरीयत की धज्जियां बिखरती हैं, क्या कुछ नहीं होता, तो हमारी जाती नमाज रोजा क्या हमें बचाएगा अगर हम उसके साथ अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। सूरत अल अनफाल की आयत 25 में भी हम पढ़ेंगे वत्तकु फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, उस फितने से डरो जो सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता जो गुनाहगार है, मतलब यह कि जो नहीं रोकते उनके ऊपर भी ये तकलीफें आती हैं। तो लिहाजा आप इस वाक्य पे कमेंट आयत 167 में वइस्तअज़ना रब्बुका लयबअथन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा, और याद करो जब आपके रब ने ये ऐलान कर दिया कि वो लाजिमन मुसल्लत करता रहेगा इन पर क़यामत के दिन तक, किसको? मैं यसूमुहुम सुअल अज़ाब, ऐसे लोग जो इनको बदतरीन अजाब देंगे। ये किनकी इशारा है? बनी इसराइल पर क़यामत तक अल्लाह बुरे हुक्मरान डालता रहेगा, क्योंकि इन्ना रब्बक लसरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब सजा देने में सब जल्दी करता है, व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। आप देखिए कि इनकी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि बुख्त नसर, टीटर्स और इसी तरह जो आपने हॉलोकास्ट और इस तरह की जो इनके दौर में जो कुछ भी हुआ था, आप उन सारी चीजों को सामने रखें तो आपको पता चलेगा हर दौर में इनके ऊपर कोई ना कोई बला और कोई ना कोई आफत आती रही। तो असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि जब कौमें अल्लाह के हुक्म नहीं मानती। कितना जबरदस्त हमारे लिए सबक है कि बुराई को देख के खामोश रहेंगे तो हम पे भी पकड़ आएगी। इसीलिए आखिरी आयत 168 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़त्तअनाहुम फिल अर्दी उममा, और हमने इन्हें जमीन में मुंतशिर कर दिया फिरकों की सूरत में। यहां से अब देखिए ये फिरकेबाजी का है, पहला कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन थी। ये है जिसको दौरे इंतशार कहते हैं, डायस्पोरा का नाम सुना होगा, 70 ईस्वी में शुरू हुआ। रोमन जर्नैल था टीटस, इसने सेकंड टेंपल को शहीद किया बैतुल मक़दस के, जो हजरत उज़ैर के दौर में बना था। टीटस के हुक्म पर यरूशलेम से 133,000 यहूद को एक दिन में कत्ल किया गया, सोच सकते हैं, और जो बाकी बचे उनको फलस्तीन से निकाल दिया गया। जब मुल्क बदर हुए तो ये लोग मिस्र, हिंदुस्तान, रूस और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे। फिर जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ ना, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत से यहूद खानदान वहां जाकर आबाद हुए। इस आयत में कहते हैं कि उसी इंतशार की तरफ इशारा, पूरी दुनिया में इनको तितर बितर कर दिया और इस तरह इनकी इज्तमाईयत खत्म हो गई। जहां जाते इनसे नफरत की जाती, यूरोप में इन पर बहुत सारे जुल्म सितम हुए। ईसाइयों की इनसे नफरत और दुश्मनी का जिक्र तो अब सूरह मायदा आयत 14 में पढ़ भी चुके हैं, फ़ग़रैना बैनहुम अल-अदावत वल-बग़्दा इला यौमिल क़ियामा, कि इनके दिलों में बुग़्ज़ और अदावत डाल दी क़यामत तक के लिए। इस मुसीबत से बचे तो दूसरी जंग शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोम में। हिटलर के हाथ जो कहानी हुई सबको पता, इसने हुक्म दिया था कि पूरी दुनिया से ज्यूज़ को जमा करो, पूरे मशरकी यूरोप से ज्यूज़ को इकट्ठा किया गया कंसंट्रेट कैंप्स बनाए गए, उसमें जमा किया गया और उसके बाद उनको आग लगा दी। आपने सब कहानियां पढ़ी होंगी, आपने नहीं पढ़ी तो जो बच्चे यहाँ रहते हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होंगी। ऑटोमेटिक प्लांट थे, जब सारे लोग वहां आ गए तो फिर उन्होंने जो लाशें थी उनका क्या करें इतनी, उन सबको मर्दों औरतों बच्चों को एक बड़े से हॉल में जमा किया, उनके कपड़े उतरवाए, बाल मुंडवाए उनके, फिर बाल में उनके बालों से कालीन बनाए गए। ये इनकी अल्लाह ताला ने एक रुसवाई कराई गई। और कहते जो नाजी कबीले थे उन्होंने अपने दफ्तरों में वो बिछाए बड़े फखर से, और उसके बाद गैस के बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर इनको डाला कि मरने के बाद जब इनकी मशीनों से इनका चूरा निकाला गया, खास केमिकल्स थे जिससे इंसानी गोश्त एक स्याह रंग के लिक्विड में बदल जाता है ना, स्याह किस्म का ऐसा होता है, कहते हैं उसमें बदला और उसके बाद में खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया। हिस्ट्री पढ़ा करें। अल्लाह अकबर, आज 20वीं सदी में जो हुआ ये सब इस आज की सदी की कहानी है, कोई पुरानी नहीं आपको सुना रही। और बाज लोग कहते हैं कि तकरीबन 60 लाख तक ये लोग थे, कुछ कहते हैं 40 से 60 लाख तक ये होते जिनको उस मौके पे इस तरह गाजर मूली की तरह काटा गया। ये है मैं यसू मुहम सू अल अजाब, जो इन पे बुरे अजाब देगा। और सोचिए जो क्यामत में होगा वो तो कल की बात है। आज जो दुनिया में हो रहा है कहते हैं ये ऐसी है जैसे चिराग का शोला बुझने से पहले फड़फड़ाता है। आज हमें ये सब कुछ दिखता है लेकिन आज हमारी आंखें नहीं खुलती। लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखे, मिन हम साले हो ना व मिन हम दू नजालिक, इनमें कुछ साले लोग हैं और कुछ वो भी हैं जो दूसरी तरह के, ये नहीं का बदल है का दूसरी तरह के। वह बलो ना हम बिल हसनाती व सैयाती लअल्लहुम यरजिऊन, और हम इन्हें भलाई और बुराई से आजमाते रहे हैं कि शायद ये लोग फिर आए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।